फिर इसके बाद देखिए कि इस मार्के में नबी सल्लम के मुट्ठी भर रफ़क़ा ने जिस सरफरोशाना मोहब्बत और वालेहाना फिदाकारी का मुजाहरा किया, इसका तसव्वुर भी रहती दुनिया तक आलम इस्लाम को अपनी रूह मुकद्दस से माला माल करता रहेगा। दरअसल कोई भी तहरीक हो, इसके दाई अव्वल और इसके कायद आला की शख्सियत बहरहाल इसकी एक अहम कुव्वत होती है। इसको भी हाईलाइट करें, लीडर की एक अपनी अहमियत होती है, ये कभी नहीं ख़त्म होती, याद रखिए। बड़ी बड़ी तहरीकें लीडर्स के बाद हिल जाती हैं, फिर वही लोग दोबारा ऊपर उभरते हैं जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, वो संभाल लेते हैं। अल्लाह के नबी के बाद सहाबा कराम ने दीन की डोलती हुई कश्ती को संभाल लिया था, क्योंकि तरबियत बड़ी सख्त हुई हुई थी। बाप जाता है अचानक दुनिया से, तो वो बच्चे जिनको पहले से गर्म सर्द का फ़र्क बताया होता है वो संभल जाते हैं, और जो पहले झूठी तारीफ़ें और लाड दिखा रहे होते हैं या तारीफ़ें सुन रहे होते हैं, फिर वो बाद में बापों की करोड़ों की जायदादें कोड़ियों के मोल बेच देते हैं। तो यही जुमला यहाँ भी है कि दरअसल कोई भी तहरीक हो, इसके दाई अव्वल और इसके कायद आला की शख्सियत बहरहाल एक अहम कुव्वत होती है, लेकिन इस्लामी तहरीक में तो दाई और कायद के लिए गहरी मोहब्बत का मुतालबा किया गया। खुसूसन इस मनसब पर जब रसूल व नबी की हस्ती रौनक अफरोज़ हो, तो इसके लिए इंतहाई फिदाकारी लाजमी है। इस्लामी तहरीक किसी तरह भी अपने दाई और कायद को एक तरफ डालकर आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीक और इसके दाई दोनों की कुव्वत, इज्जत और दायरे असर की वसअत बिल्कुल मुश्तरक हो जाती है। वो जमात बहुत ही अंधी जमात हो सकती है जो दाई और कायद को नज़रअंदाज करके और इसको बेवकूत बनाकर महज यके अज़मिना करार दे कर तहरीक के मुजर्रद असूलों को गालिब कर ले जाना चाहे। मुश्किल जुमले हैं, समझ आए? यानी लीडर को पीछे डालकर और फॉलोअर्स आगे बढ़ जाएं तो वो जमात तरक्की नहीं करती। ये ऐसे जैसे बच्चे घर में खुद बड़े बन जाएं, माँ बाप को पीछे कोठरी में डाल दें और खुद आने वालों को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करें, ये मुराद है। यानी लीडर की अहमियत, असल में ये बात है कि नबी सल्लम का जो किरदार था वो तो था ही, वो तो पीछे कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन आपने सहाबा को हर मौके पे थाम कर और अपना मुकाम भी याद दिलाया कि मेरा क्या मुकाम है तुम्हारे बीच में। तहरीकों के लिए असूलों क़ियादत दोनों ऐसे लाजिम व मलजूम अंसर हैं कि असूलों पर मुहकम ईमान और क़ियादत के लिए गहरी मोहब्बत व फिदाकारी एक दूसरे पर इन्हिसार रखते हैं। हजूर के रफका आपकी हस्ती पर असूल होने की हैसियत से भी परवाना वार फिदा होते थे, और दूसरी तरफ ये शऊर रखने की वजह से भी कि आपका वजूद तहरीक की जान है। इसको हाईलाइट करें। वो कहते हैं ना, रूहें रवां, ऐसी रूह जो रवां रखती है चीज़ों को। हाँ, आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़, आपकी इज़्ज़त की बुलंदी और आपके असर व रसूख की तौसी के लिए जाने निसार करते थे। हजूर की सच्ची मोहब्बत के लाजवाल नकूश उन्होंने मैदान उहद के किरतास पर सब्त किए। बात सच है, दुश्मन के दल के दल, दल कहते हैं गिरोह को, बड़े बहुत हजूम, दुश्मन के दल ने जब हजूम किया तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिदा गूंजी, कौन मुझ पर जान कुर्बान करता है। ज़ियाद बिन सकन चंद अंसारियों के साथ भिड़े और यके बाद दीगरे 7 अशाक, अशाक है यानी मोहब्बत करने वाले, आप इसको बदल भी सकते हैं, यके बाद दीगरे 7 मोहब्बत करने वालों ने अपने आप को निसार कर दिया। इनमें से एक ज़ियाद थे, जिनको नीम जान हालत में लाया गया तो आखिरी कुव्वत से काम लेकर उन्होंने अपना सर आगे बढ़ाकर हजूर के कदमों से मस कराया। अब्दुल्ला बिन कुमैया ने जब तलवार का वार किया तो उम्मे अम्मारा लपक कर हजूर के सामने आ गई और बहुत गहरा जख्म कंधे पर लिया। इन्हीं के हायल होने की वजह से ये वार हजूर के हक में ओछा हो गया, यानी आपको तकलीफ ना हुई। अबू दुजाना ने आपको अपने जिस्म से ढांप लिया और अपनी पीठ को सपर बना दिया, यानी ढाल बना दिया, जिस पर कितने ही तीर आ आ के पेवस्त हो गए। तलहा ने दुश्मन की तलवारें हाथों पर रोकी और इनका एक हाथ कट कर गिर गया। अबू तलहा हजूर के सामने सपर लिए खड़े रहे और साथ ही इस जोश से नावुक अंदाजी की कि दो तीन कमानें टूट गईं। एक सीधा साधा मुसलमान खजूरें खाते खाते इत्तफाकन पहुंच गया। ये आलम देखकर इसके अंदर भी जज्बा शौक उमड़ आया। इनका नाम लिख लें, उमैर बिन हमाम थे ये। हजूर से पूछा कि अगर मैं लड़कर कुर्बान हो जाऊं तो मेरा इंजाम कैसा होगा। फरमाया जन्नत। कहने लगा, अच्छा, अगर मैंने इन खजूरों को खाने की मोहलत पा ली तो बड़ी उम्र पाई, यानी ना समझूं कि फिर भी खजूरें ही खाता जा रहा हूं। खजूरें तो बाद में खा लूंगा अगर मौका मिला तो। वो एकदम टूट पड़ा और ज्यादा देर ना गुजरी कि शहादत गह इश्क में कुश्तगाने खंजर तस्लीम में शामिल हो गया। जिस तहरीक में ऐसा इसार मोहब्बत काम कर रहा हो, इसकी मौजों को कोई ताकत रोक नहीं सकती। सच बताएं, हम हैं से कई दफा अल्लाह रात जाते हैं, बंदों से भी बहुत बड़ा मार्का ले लेता है, जैसे कि ये उमर बिन हमाम थे। फिर एक नमूना था जो साद बिन रबी ने पेश किया। हजूर चूंकि खुद भी अपने रफीकों से गहरी मोहब्बत और शफकत रखते थे और हर एक पर आपकी निगाहें तवज्जो रहती थी, इसलिए जंग के खात्मे पर एक एक की तहकीक हाल फरमाई। इस सिलसिले में पूछा कि साद बिन रबी किधर हैं। यहाँ से देखिए कि अल्लाह के नबी को एक एक बंदे की खबर होती थी। मैदान जंग में कहाँ होश होती है, लेकिन जिनसे मोहब्बत होती है उन पर निगाहें लगी होती हैं। खैर, तलाश किया गया तो एक तरफ जस्ते जाँ बलब पड़ा था। आखिरी लम्हे नफ्स सल्लम के लिए सलामे शौक और दुआए मोहब्बत का हदिया भेजना, नीज साथियों को बतौर वसीयत पैगाम दिया कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुश्मन का हाथ पहुंच गया तो तुम में से एक आंख भी देखने वाली मौजूद हुई तो फिर बारगाह इलाही में तुम्हारी कोताही का कोई उजर ना सुना जाएगा। यानी अगर तुम्हारे सामने नबी को कुछ हो गया तो तुम कल जवाब दे। ना अपने कर्ब का ख्याल, ना उज़्ज़ा व अकरबा की फ़िक्र, क्योंकि अमूमन तो अपनी मौत के वक्त में इनका फ़िक्र होता है ना कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, और दर्द का एहसास भी कोई नहीं है। ना मालो जायदाद के मुस्तकबिल पर कोई काविश, ले दे के ख्याल है तो नस्बुलैन का और इसके दाई का। ऐसे नहीं लगता कि अभी हम तो बहुत पीछे खड़े हैं उन ईमान के जज्बों और उन जज्बों के इजहार के मौके। अभी हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चाहिए। हम ठंडे होके बैठ जाते हैं और क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कैसे सहाबे कराम की अल्लाह ने कदर फिर की है। सच है ना, करनी थी ना, ऐसे लोगों की कदर तो होगी ना। फिर इसी तरह तीसरा नुक्ता देखिए कि मक्का की इनकलाब दुश्मन फौज ने अपने घिनौने जज्बात का मुजाहरा यूं किया कि मुस्लिम शहदा की लाशों की बेहुरमती की, खसूसन इनकी खवातीन ने अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए लाशों के पेट फाड़े और इनके नाक कान काट कर हार बना बना के गलों में डाले। हिंद सौजाए अबू सुफियान जो जनाने दस्ते की सरबराह थी, यानी औरतों की इंचार्ज थी, इसने शान दरिंदगी का अफसोसनाक नमूना पेश किया और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो का चेहरा बिगाड़ा और पेट चाक करके इनका कलेजा निकाल के चबाया। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन हजश का मुसला किया गया। खुद अबू सुफियान की यह हरकत देखे कि वो हजरत हमजा के दहने मुबारक पर कमान से मार मार कर कहता देखा गया कि लो अब मजा चखो। और रिश्तेदार थे, कैसे खून सफेद हो जाता है ना कुफर की मोहब्बत में। लेकिन दूसरी तरफ नबी सल्लम ने मुस्लिम फौज को सख्ती से बाज रखा कि वो दुश्मन की लाशों का मुसला करें या इनकी बेहुरमती के मुर्तकिब हों। इस्लामी तहरीक के असूलों में इंसानियत का एहतराम शामिल था। वह अपने अलमबरदारों को ये इज़्ज़त नहीं देती थी कि दूसरे अगर पस्ती में गिरें तो जवाबन मुसलमान भी पस्ती में गिर सकते हैं। अबू सुफियान को जब अपने लोगों के इस करतूत की खबर मिली तो इसने खुशी से इसका खैर मुकदम किया, मगर एक साथी के गिरफ्त करने पर इसे तंबीह हुआ कि ऐसी जिम्मेदारी लेकर कहीं कोई जवाबी कार्रवाई ना भुगतनी पड़े, नीज राय आमा के दायरे में अपना असर और न गिर जाए। अबू सुफियान जब आखिर वक्त में पहाड़ी पर आया तो इसी एहसास के तहत इसने ऐलान किया कि ये वाकयात मेरी मर्जी से नहीं हुए, लेकिन साथ ही ये भी कह गया कि इनके होने पर मैं रंजीदा भी नहीं हूँ। आज अंदाज़ा करना मुश्किल है कि इनकलाब दुश्मन कुव्वत की इस कमीना हरकत ने इसके अवामी असर में कितनी कमी की होगी। अलबत्ता एक वाक्या सामने है कि अबू सुफियान को हजरत हमजा के चेहरे पर कमान मारते देखकर जलीस बिन जबान कनानी ने अपनी कौम से कहा, ए बनी कनाना, कुरैश के बड़े सरदार को देखते हो, ये अपने बनी आम यानी चचा के बेटे के साथ क्या सलूक कर रहा है। इस पर अबू सुफियान चौंका, यानी उनके अपने लोगों में ये चीज़ पसंद नहीं की गई कि इन्होंने लाशों का मुसला किया। फिर फिर चौथा पॉइंट, नबी सल्लम अपनी जमात को मैदान जंग का जो पाकीज़ा अखलाक सिखा रहे थे, इसकी एक झलक इस वाक़े में देखी जा सकती है कि अबू दुजाना दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए बढ़े तो हिंद इनके आगे सामने आ गई। हिंद अगरचे मैदान में शरीके जंग थी और मुसलमानों के खिलाफ इसके जज्बात नहायत जहरीले थे, लेकिन अबू दुजाना ने इसके सर पर तलवार तान देने के बाद इस एहसास से चौंक कर रोक ली कि रसूलुल्लाह की अता करदा तलवार के शायाने शान नहीं कि इससे किसी औरत की जान ली जाए। कितना ज़री वाक़ यानी औरतों को नहीं मारते थे मैदान जंगों में भी, आई हुई थी लेकिन नहीं मारा इनको। पांचवा नुक्ता क्या कि मुस्लिम खवातीन ने मारका उहद के सिलसिले में जिस ईमान, शुजात, सब्र और तहरीक की वफादारी का मुजाहरा किया, इससे अंदाज़ा होता है कि हजूर की तहरीक ने इस सिंफ को हालत जमूत में पड़ा नहीं रहने दिया बल्कि इसे मुतहरिक किया, इसकी तरबियत की, इससे खिदमात ली। चंद मिसालें देखते हैं। हमने ऊपर बयान किया कि किस तरह उम्मे अमारा ने एक औरत होते हुए अपने आप को नबी सल्लम के लिए ढाल बना दिया। हज़रत हमजा की बहन जनाब सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा रंजीदा इत्तलात सुनकर मदीना से जब बहुत पहुँची तो नबी सल्लम ने इनके साहबजादे ज़ुबैर से कहा कि जनाब सफ़िया को अपने मामू की नाश तक न जाने दो क्योंकि इस मंज़र की ये ताब न ला सकेंगी। यानी भाई को देखना बड़ी तकलीफ़ की बात है ऐसी हालत में। सफ़िया कहने लगी, मैं सारा किस्सा सुन चुकी हूँ और राह हक में ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं, यानी मैं अपने भाई को इस हाल में देख लूंगी। इनको इजाज़त दे दी गई, बड़े साबिराना तरीके से एक निगाह डाली, दुआए मगफरत की और चली आई। भला क्यों, ये सब्र क्यों आता है? कि मकसद बहुत बड़ा है जिसके रास्ते में जान गई। हमें तो मरने वालों पे कई कई साल तक गम ही नहीं ख़त्म होता। हिंद नामी एक और अंसारिया जो अमर बिन जमुख की जौजा और खलात बदरी की वालदा थी, के लिए यह आजमाइश बहुत ही कड़ी थी कि इनके बाप, भाई, शौहर सभी इस्लाम पर निसार हो गए थे। हम क्या कहते हैं ऐसी औरत के बारे में, बेचारी। लेकिन उन्होंने इन सारे जख्मों को हौसला मंदी से कलेजे पर लेकर बार बार यही दरियाफ्त किया था, क्या क्या खुदा के रसूल सही सलामत है। जब इनको इधर से इत्मीनान हुआ तो पुकार उठी, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, आप सलामत हैं तो फिर कोई मुसीबत भी भारी नहीं, सब कुछ गवारा है। आज हम ऐसे कहाँ खड़ा है हमारा ईमान, लेटा हुआ ईमान है आज हमारा। हज़रत आयशा, उम्मे सुलैम और उम्मे सुलैत जैसी मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशीन खवातीन हंगामी मुसीबत के आलम में पांचे उठाए हुए दौड़ दौड़ कर पानी की मशकें भर कर लाती और जख्मियों को भी लाती। मुसलमानों की शिकस्त की इत्तला और नबी सल्लम की वफ़ात की गलत खबर पाकर जनाब फातिमतुज़्ज़हरा भी उहद आ गई थी। उन्होंने आकर नबी सल्लम के ज़ख्मों को धोया और मरहम पट्टी की। ये दीन इतने आराम से तो नहीं फैला जितने आराम से अब हम इसको ज़ाया कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ अल्लाह के नबी ने कितनी चोटें खाकर ये दीन हम तक पहुँचाया और आज हम कितने मज़े से इसका एक एक हिस्सा बखरा उतारते जा रहे हैं। फिर छठी बात, कायद इंसानियत ने अपनी तलवार जब हज़रत अबू दुजाना को इनायत की तो वो सर पर सुर्ख रुमाल बांधे तलवार लहराते हुए खूब अकड़ अकड़ कर दुश्मनों की सफ़ों की तरफ बढ़े। इस मंज़र को देख कर नबी सल्लम ने फरमाया कि ये चाल अल्लाह को सख्त नापसंद है मगर इस तरह के मौाक़े पर पसंद है। आपने गोया बड़े अहम नुक्ते की वजाहत कर दी, आम जिंदगी में अफराद का किसी भी पहलू से अकड़ दिखाना इस्लाम में सख्त नापसंदीदा, लेकिन दुश्मनों से कशमकश और तसादुम करते हुए मुफाखरत और अकड़ का अंदाज ऐन मतलूब है। इनकिसार खूबी है मगर वो कोई गैर हकीम शख्स ही हो सकता है जो जंग के मैदान में भी एक अच्छे अखलाकी असूल को गलत तौर पर इस्तेमाल करके दुश्मन के सामने तवाज़ो और इज्ज़ो इनकिसारी का मुजाहरा करने लगे। हजूर ने इसे एक कलमे से इस गैर हकीमाना मजहबी जहनीत का इजाला कर दिया जो असूल परस्ती के गलत जोम में पढ़कर बास अखलाकी कदरों को बेमहल तौर पर उल्टे मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगती है। अर्दा पेकार के अलावा शेर व खिताबत के मैदान में भी जो इस दौर में सियासी रंग रखता था, आपने अपने शायरों और खतीबों के जरिए मुफाखरत कराई। इसी तरह उमरतुल कज़ा के मौके पर नबी सल्लम ने सहाबा को तवाफ़ में भी फैल कर मुजाहरा कुव्वत का हुक्म दिया और सही करते वक्त भी तन कर कदम उठाने और मशी के बाद दौड़ लगाने हरवल की ताकीद की, यानी आगे बढ़ना। बाद में यही सुन्नत कायम हो गई। इस मौके पर आपने बतौर दुआ ये भी कहा कि अल्लाह इस शख्स पर रहम करे जो आज कुफार के सामने कुव्वत का इजहार करे। गोया कशमकश के किसी भी दायरे में इज्जो इनकिसार का इस्तेमाल मोहलक हद तक गलत होगा। इस्लामी तहरीक ऐसे अंधे जुनून के बल पर नहीं चल सकती जो अखलाकी असूल और इकदार का सही इस्तेमाल मवाक़े के फ़र्क को पहचान कर ना कर सके। क्या पता चला कि एक ही वाक़ा है लेकिन उसमें इतनी मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला ने देकर हम सबको भी आज अपने लिए गौर व फ़िक्र और की दावत दी है कि हम अपने अमल को देखें। देखिए आज हम उस मैदान जंग में तो नहीं नज़र आते लेकिन नबी के दीन का दिफा तो है ना। उधर तो नबी का दिफा था ना, आज दीन का दिफा है। और वो सहाबे कराम अपने जिस्म पर चोटें खा रहे थे, आज हम दीन को इतना हल्का समझकर इस चीज़ की गवाहियां दे रहे हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए इस विरसे की कोई कदर नहीं है।